पाठ 22 अध्याय 16 और 17। हमने व्यवस्था विवरण 16 के पिछले दो पाठों में प्रभु के पर्वों के कुछ गूर लेकिन स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत ध्यान से विचार किया है, खासकर उन पर जिनमें तंबू मंदिर की तीर्थ यात्रा की आवश्यकता शामिल थी। क्योंकि यह एक लंबा और जटिल विषय है, इसलिए हम आज इसकी समीक्षा नहीं करेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप उन अंतिम दो पाठों को देखें। लेकिन हमने उस समय के मामले का भी अध्ययन किया जो यीशु ने उस चट्टान की कब्र में बिताया और समय रेखा पर विस्तृत रूप से बताया कि वह कब मरा और फिर से जी उठा। जैसा कि अपेक्षित था, मुझे कक्षा के बाद और अगले दिनों में काफी प्रश्न मिले और दिलचस्प बात यह है कि उनमें से अधिकांश आपकी चिंताओं के इर्द गिर्द केंद्रित थे कि ऐसा क्यों है कि हमारे कुछ सबसे प्रसिद्ध और प्रिय पादरी और बाइबल शिक्षक इतनी आसानी से चर्च की दृढ़ स्थिति के मुद्दे पर बात करते हैं कि यीशु शुक्रवार को मर गया और रविवार को जी उठा, जिसका स्पष्ट रूप से परिणाम यह हुआ कि उसने कब्र में केवल दो रातें बिताई। फिर भी मैं ये मानता हूं कि शास्त्र स्पष्ट रूप से इस घटना की भविष्यवाणी करते हैं कि वह कब्र में 3 दिन और 3 रातें बिताएगा। मैं इस गुड फ्राइडे परंपरा या घटनाओं के क्रम पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बहस नहीं करने जा रहा हूं। मैं बस यह बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र वास्तव में क्या कहता है और उसी युग के ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं, और आपको दिखाता हूं कि वे कैसे पूरी तरह से सहमत हैं। और मुझे लगता है कि हमने अपने पिछले पाठ में यही किया था। हालांकि एक अच्छा सवाल जो सामने आया वह था, बाइबल में यह कहां लिखा है कि यीशु 3 दिन और 3 रात कब्र में रहे? आइए हम सीधे इस पर चर्चा करें और फिर अध्याय 16 समाप्त करेंगे। सबसे पहले, भविष्यवाणी तब स्थापित हुई जब भविष्यवक्ता योना को प्रभु द्वारा नीनवे भेजा गया, लेकिन वह पीछे हट गया क्योंकि उसने इन विदेशी लोगों को परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के योग्य नहीं समझा। परिणाम यह हुआ कि योना को अस्थाई रूप से एक विशाल मछली ने निगल लिया। योना 1:17 और प्रभु ने योना को निगलने के लिए एक बड़ा मगरमच्छ ठहराया कि योना को निगल जाए, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सैकड़ों बाइबल अनुवादों में से कौन सा चुनता है। 3 दिन और 3 रातों का कार्यक्रम स्थापित है और यह मूल इब्रानी और इस विषय पर रब्बी की टिप्पणी से पूरी तरह मेल खाता है। दूसरा, बाइबल में कहां लिखा है कि योना से जुड़ी यह घटना वास्तव में यीशु के कब्र में रहने के समय की भविष्यवाणी थी, या यह केवल एक धारणा थी जिसे उचित रूप से चुनौती दी जा सकती थी? मत्ती 12:38, तब कुछ शास्त्री और फरीसी उसे कहने लगे, हे गुरु, हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यह पीढ़ी 39 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उसे न दिया जाएगा। 40, क्योंकि जैसे योना 5 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। योना 3 दिन और 3 रात भेल के पेट में था। 3 दिन और 3 रातें किसी अस्पष्ट भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु के सटीक शब्दों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं कि क्या होने वाला था। गुड फ्राइडे का परिदृश्य सही नहीं हो सकता। यीशु शुक्रवार को दिन के समय नहीं मर सकते थे, शुक्रवार की रात कब्र में बिता सकते थे, फिर शनिवार का दिन और शनिवार की रात भी कब्र में रह सकते थे, और फिर रविवार की सुबह उठ सकते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयास कर ले, और ऐसा करने के लिए सबसे मूर्खतापूर्ण प्रयास भी किए गए हैं, शुक्रवार की रात और शनिवार की रात केवल 2 रातें हैं, और यीशु कहते हैं कि वे 3 रातों के लिए पृथ्वी के हृदय में रहेंगे। एकमात्र अन्य संभावना यह है कि जिस घटना के बारे में यीशु ने बात की थी, पृथ्वी के हृदय में 3 दिन और 3 रातें बिताने की, वह उनकी मृत्यु और कब्र में परे रहने के बारे में नहीं थी। लेकिन मसीहा द्वारा भविष्यवाणी की गई ज्ञात या की गई कोई अन्य दर्ज घटना नहीं है जो इस परिदृश्य को पूरा करती हो। जहां तक परमेश्वर द्वारा मनुष्य को बताई गई किसी भी चीज का सवाल है, तो वह उस कब्र में उनके समय का उल्लेख कर रही होगी। यह किसी तरह के एजेंडे को पूरा करने के लिए पहले एक सिद्धांत स्थापित करने और फिर उसे फिट करने के लिए शास्त्रों को तौर मरोड़ कर पेश करने की यह गुमराह मानसिकता है, जिसने अक्सर चर्च को भ्रमित कर दिया है और कई बार बाइबल का वास्तव में पता लगाने से डरता है, इस डर से कि हम क्या पा सकते हैं। कौन सा ईसाई, विशेष रूप से इंजीलवादी, बाइबल को शाब्दिक रूप से लेने के बारे में नहीं बोलता है ताकि आसानी से पढ़ा जा सके या जो हमारी परंपराओं के अनुकूल न हो उसे त्याग दिया जा सके? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लोग तोरह क्लास में नए हैं, आप पाएंगे कि आपने मसीह में जो कुछ भी कभी भी भरोसा किया है वह तोरह में पूरी तरह से स्थापित और मान्य है। तोरह का अध्ययन करने का परिणाम यह है कि संदेह कम हो जाएगा और विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर का वचन सभी, केवल उसका कुछ हिस्सा नहीं, जीवित और अच्छा है, सटीक और विश्वसनीय है, और हम सभी इसे समझ सकते हैं यदि हम इसे सीखने के लिए समय निकालें और अपने मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में पवित्र आत्मा के लिए खुद को खोलें। आज हम व्यवस्था विवरण अध्याय 16 की पद 18 से आगे बढ़ेंगे, जब विषय वस्तु परमेश्वर द्वारा निर्धारित उपासना पद्धतियों और बाइबल के पर्वों से हटकर इज़राइल के नागरिक और धार्मिक अधिकारियों से प्रभु की अपेक्षाओं की ओर बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, जो आने वाला है वह मानव सरकार के हर स्तर से संबंधित है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नागरिक स्तर पर है या धार्मिक स्तर पर। मूल रूप से विचार यह है कि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में आध्यात्मिकता को सरकार से अलग करने या खंडित करने जैसी कोई बात नहीं है। ये व्यवस्था धार्मिक नेताओं और सरकारी नेताओं पर लागू होते हैं। वैसे भी इज़राइल में दोनों के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं थी, नागरिक और धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आइए व्यवस्था विवरण 16 की 18वीं पद से लेकर अध्याय के अंत तक पढ़ें। व्यवस्था विवरण 16 का 18 को पुनः पढ़ें अंत तक। मानव सरकार का विषय अध्याय 21 में अच्छी तरह से जारी रहेगा और हम पाते हैं कि चार बुनियादी प्रकार के मानव अधिकारियों पर चर्चा की गई है, राजा, पुजारी, न्यायाधीश और पैगंबर। वास्तव में तोरह में इन पदों और उपाधियों में से प्रत्येक के लिए कोई अच्छी परिभाषा दर्ज नहीं है। ये उस युग की सभी मध्य पूर्वी संस्कृतियों के बीच अच्छी तरह से समझा और सामान्य ज्ञान रहा होगा। हम एक सामान्य नियम के रूप में पाएंगे कि यह परमेश्वर का इरादा नहीं था कि यह सरकारी अधिकारी कुलीन सामाजिक वर्गों, सामाजिक आर्थिक पैमाने पर सामान्य कामकाजी व्यक्ति से ऊपर का प्रतिनिधित्व करें, न ही यह कल्पना की गई थी कि यह सरकारी अधिकारी नागरिकों पर अहंकारी तरीके से शासन करेंगे। इसके बजाय हम जो अध्ययन करेंगे उसका उद्देश्य इन चार पदों, राजा, पुजारी, न्यायाधीश, पैगंबर में से प्रत्येक को कैसे संचालित करना है, इस पर हदें और सीमाएं निर्धारित करना है और यह प्रदर्शित करना है कि वे आम जनता की जांच से ऊपर नहीं है। यह दिलचस्प है कि यह खंड न्यायाधीशों और अधिकारियों नामक पदों की नियुक्ति स्थापित करने से शुरू होता है, क्योंकि केवल कुछ पदों के बाद हमारा ध्यान इज़राइल द्वारा पवित्र खंभे और स्तंभ स्थापित करने के विरुद्ध निषेध की ओर जाता है। निस्संदेह ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय की मध्य पूर्वी संस्कृतियों में यह अधिकृत सरकार और धार्मिक अधिकारी आमतौर पर आम जनता नहीं थे जो पवित्र खंभे और स्तंभ स्थापित करते थे, हालांकि कभी कभी आम नागरिक ऐसा करते थे। इसीलिए इज़राइल की सरकार और धार्मिक अधिकारियों को इज़राइल के मूर्ति पूजक पड़ोसियों की सामान्य प्रथाओं की नकल नहीं करनी थी जो सतह पर बहुत सामान्य और साधारण लगती थी। पद 18 के पहले शब्द सबसे शाब्दिक रूप से इस प्रकार दर्ज हैं, तुम अपने लिए न्यायाधीश नियुक्त करोगे। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहला सवाल जो कोई भी इज़राइली पूछता वह यह होता कि इन न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करेगा, और इसका उत्तर यह है कि लोग ही नियुक्त करते हैं। चूंकि कबीलाई व्यवस्था में लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में बुजुर्गों को नियुक्त किया जाता है, बुजुर्ग नेता होते थे जो अपने कबीले के प्रति तो आबद्ध होते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे कबीले के मुखिया के प्रति आबद्ध हों। इसलिए वास्तव में ये बुजुर्ग ही थे जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। न्यायाधीश के लिए इब्रानी शब्द शोफेट है, और इज़राइल द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद हम न्यायाधीशों के 250 से 300 साल के युग में प्रवेश करते हैं, जिन्होंने शासन किया, नेतृत्व किया और इज़राइल को विदेशी उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई। हमारे पास बाइबल की एक पूरी किताब है। वैसे यह बाइबल की सबसे आकर्षक किताबों में से एक है जो इस अवधि को संबोधित करती है, और इसे उचित रूप से न्यायियों की किताब शोफेटिम का सेफर कहा जाता है। फिर भी यह व्यवस्था विवरण में ही है जहां शोफेट का पद वास्तव में स्थापित किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन के नागरिक मामलों का निर्णय करने वाले अधिकारियों की व्यवस्था इज़राइल के लिए नई थी। हम निर्गमन में पढ़ते हैं कि मूसा के ससुर यित्रो के प्रोत्साहन पर मूसा ने एक व्यवस्था प्रणाली स्थापित की, जिसके तहत कुछ ईमानदार लोगों बुजुर्गों को लोगों के सामान्य और सांसारिक मामलों की सुनवाई के लिए एक प्रकार की निचली अदालत के रूप में चुना गया, और यदि मामला बहुत कठिन या गंभीर प्रकृति का साबित हुआ तो मूसा और महायाजक हारून इसमें शामिल होते थे। अंतर यह है कि जिस व्यवस्था का वे जंगल में इस्तेमाल कर रहे थे उसके तहत व्यवस्था मामलों को गोत्र दर गोत्र नहीं निपटाया जाता था, यानी अगर कोई व्यक्ति यहूदा के गोत्र से संबंधित था तो वह सिर्फ यहूदा के गोत्र के सदस्यों के प्रति जवाबदेह नहीं था, बल्कि यह एक केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए था कि मूसा ने विभिन्न गोत्रों के पुरुषों से मिलकर बनी एक परिषद की स्थापना की जो सभी का न्याय करने के लिए बैठती थी। अब हालांकि वादा किए गए देश में प्रवेश करने से ठीक पहले मोआब के पहाड़ों पर यह बदल जाएगा। जंगल में बाहर रहने के दौरान इसराइल एक नेता मूसा के अधीन काम करने वाला एक संयुक्त राष्ट्र था। जब वे कनान में इसे जीतने के लिए गए तो वही सख्त केंद्रीकृत संगठनात्मक प्रारूप बना रहा जो उनके द्वारा किए जा रहे सैन्य अभियान के लिए सबसे उपयुक्त था। केवल अब यहोशू अंतिम अधिकारी था, लेकिन यहोशू के लगभग तुरंत बाद केंद्रीय सरकार कमजोर हो गई और अनिवार्य रूप से भंग हो गई। इसलिए व्यवस्था विवरण में ये अध्यादेश कि इसराइली सरकार कैसे काम करेगी वास्तव में केवल कनान की भूमि को सुरक्षित करने के बाद ही प्रभावी होगी, जब सैन्य शैली के प्रशासन और संरचना की अब आवश्यकता नहीं थी और 12 गोत्रों में से प्रत्येक ने उनमें से प्रत्येक को आवंटित भूमि के जिले में पैर जमा लिया था, क्योंकि इसने उस समय की कल्पना की जब प्रत्येक गोत्र अधिक स्वायत्त होगी, इसलिए प्रत्येक गोत्र के पास अपने स्वयं के न्यायाधीश और अधिकारी होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि इज़राइल जल्द ही कनान में सरकार की अधिक विकेंद्रीकृत प्रणाली बन जाएगा, प्रभु अभी भी पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक गोत्र सिद्धांतों के एक ही सामान्य सेठ के तहत काम करेगी व्यवस्था तोरह। और तोरह सिद्धांत संख्या 1 को पद 18 के अंत में बताया गया है, इन न्यायाधीशों और अधिकारियों को धार्मिक निर्णय के साथ शासन करना है। इब्रानी में मिशपत तजादेक। पद 19 परमेश्वर की नजर में धार्मिक निर्णय के मूल सिद्धांतों को समझाता है। 1, निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए। 2, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। और 3, विवाद में एक पक्ष या दूसरे से रिश्वत नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि यह उपहार देने वाले के पक्ष में परिणाम को अनुचित रूप से झुकाने के लिए उत्तरदायी है। अब मुझे पद 20 में श्रट और अन्य बाइबल अनुवादों के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर सभी द्वारा उपयोग किए गए अनुवाद से कुछ हद तक परेशानी है। पद 20 आम तौर पर कहता है न्याय और केवल न्याय का पीछा करना चाहिए। निश्चित रूप से यह अर्थ परमेश्वर की न्याय प्रणाली के भीतर उनके इरादे से बाहर नहीं है। हालांकि इब्रानी में वास्तव में इस्तेमाल किए गए शब्द हैं तजडेक और केवल तजडेक का पीछा करना चाहिए। तजडेक का मतलब धार्मिकता है, न्याय नहीं। इसलिए न्यायियों को दी गई चेतावनी अधिक सटीक रूप से इस प्रकार है, तुम्हें धार्मिकता और केवल धार्मिकता का ही अनुसरण करना चाहिए। इसका महत्व यह है कि धार्मिकता ईश्वर की न्याय प्रणाली का आधार है और इसीलिए धार्मिकता ही वह लक्ष्य है जिसके लिए हर मामले का न्याय किया जाना चाहिए। और चूंकि धार्मिकता केवल ईश्वर से ही आ सकती है, इसलिए यह भी सच है कि सच्चा न्याय केवल ईश्वर से ही आ सकता है। इसलिए पद 20 का कथन कोई अस्पष्ट या भावनात्मक रूप से आवेशित आदेश नहीं है जिसे न्यायाधीशों को निष्पक्ष रूप से न्याय करना चाहिए, बल्कि यह प्रभु की धार्मिकता की व्यवस्था स्थापित करने का आदेश है, न कि कोई मानव निर्मित न्यायिक दर्शन जो परिस्थितियों और वर्तमान में प्रभारी व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होगा। और यह मिशपत तजादेक धार्मिक न्याय की व्यवस्था है जिसे व्यवस्था स्थापित करता है, और व्यवस्था मामलों का फैसला करते समय इज़राइल के भीतर हर समय व्यवस्था का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। ईश्वर के लोगों के नेताओं के लिए एक तार्किक और उचित प्रतिक्रिया के रूप में ईश्वर की न्याय प्रणाली का ईमानदारी से संचालित करने के अलावा ऐसा करने से एक आशीर्वाद मिलता है। यह है कि इज़राइल समृद्ध हो सकता है और उस भूमि पर कब्जा कर सकता है जिसे ईश्वर उन्हें दे रहा है। यह पहली या आखिरी बार नहीं है जब हम मूसा को लोगों से कहते हुए देखेंगे कि यहोवा के आदेशों और अध्यादेशों का पालन करना सरल यांत्रिक आज्ञाकारिता से परे एक उद्देश्य है, यदि वे भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे अपने पास रखना चाहते हैं, और यदि वे भूमि पर प्रचुर मात्रा में उपज की उम्मीद करते हैं तो धार्मिक न्याय के तहत रहना अपरिहार्य है। अब 3 पूरी तरह से अस्वीकार्य धार्मिक प्रथाएं आती हैं जिनसे बचना लोगों की जिम्मेदारी है और सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे निर्दयता से उन्हें खत्म करें। पद 21 में पहला यह है कि इज़राइल को सर्वशक्तिमान ईश्वर की वेदी के बगल में कोई पवित्र स्तंभ या किसी भी प्रकार का खंभा नहीं लगाना है। इब्रानी में यह कहा गया है कि उन्हें अशेरा स्थापित नहीं करना है। अशेरा की परिभाषा के साथ कुछ पल बिताने लायक है। अशेरा का मतलब है किसी भी तरह का लकड़ी का खंभा, पैर या पैर जैसी वस्तु जो किसी देवता को समर्पित होती है। ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजक इन खंभों को परमेश्वर या देवी के रूप में देखते थे, यह सिर्फ ईश्वर प्रतीक थे जो कुछ देवताओं का सम्मान करते थे। कनानी लोगों ने बहुत पहले ही अपने 2 प्राथमिक देवताओं बाल और अश्तोरेत को सम्मानित करने के लिए 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को खड़ा करना शुरू कर दिया था। इसलिए किसी समय इज़राइल द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने से बहुत पहले कनान देश में धार्मिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक देवदार का पैर या लकड़ी का खंभा लगभग विशेष रूप से प्रजनन की कनानी देवी अश्थोरेत के साथ जुड़ गया। यही कारण है कि अगले पद में कनानियों द्वारा अपने मुख्य देवता बाल को सम्मानित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु के बारे में भी निषिद्ध किया गया था। वह वस्तु एक पत्थर का खंभा है जिसका कभी कभी खरा पत्थर के रूप में अनुवाद किया जाता है। इसलिए कनान में एक पत्थर का खंभा पुरुष देवता बाल के सम्मान में निर्मित एक वेदी या मंदिर को दर्शाने का सामान्य तरीका था, और महिला देवी अश्तोरेत के सम्मान में बनाई गई एक वेदी या मंदिर के बगल में एक पैर या लकड़ी का खंभा लगाया जाता था। कनान देवता पौराणिक कथाओं में अश्तोरेत बाल की पत्नी थी। स्वाभाविक रूप से प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी वेदी के बगल में किसी पेड़ या खंभे या खरे पत्थर का इस्तेमाल करने की हिम्मत मत करो, ताकि उस वेदी को मुझे यहोवा को समर्पित किया जा सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो चीज स्पष्ट रूप से कनानियों के देवताओं का प्रतीक है उसका फिर से इस्तेमाल किया जाए और फिर उसे उसे समर्पित किया जाए। और ऐसा आम चलन था जब एक समाज दूसरे समाज के पवित्र स्थानों पर विजय प्राप्त कर लेता था। यही कारण है कि हम तोरह में कुछ ऐसे कामों के विरुद्ध कई व्यवस्था देखेंगे, जैसे बकरी के बच्चे को उसकी मां के दूध में पकाना, जो सतही तौर पर स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं लगते, लेकिन इन्हें गैर व्यवस्था घोषित कर दिया गया क्योंकि ये कनानी पूजा पद्धतियां थीं और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इसमें शामिल लोग उसकी पूजा में शामिल हों। अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो कुछ लोग अभी पूछ रहे होंगे कि अगर पत्थर के खंभे खरे पत्थर परमेश्वर द्वारा सख्ती से निषिद्ध हैं, तो हम देखते हैं कि याकूब ने एल शद्दाई के लिए एक पत्थर खड़ा किया था जब वह कनान से मेसोपोटामिया की अपनी यात्रा पर लगभग 5 शताब्दियों पहले था, या हम अब्राहम को उससे 100 साल पहले बीर शेवा में ताम्र वृक्ष के नीचे एल शद्दाई के लिए एक वेदी स्थापित करते हुए देखते हैं। वास्तव में मूसा ने माउंट सिनाई पर इनमें से 12 पत्थर स्थापित किए थे और यहोशू ने शेखेम में एक विशाल खरा पत्थर स्थापित किया था और ये सभी यहोवा के सम्मान के लिए थे और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि यहोवा ने इस पर आपत्ति की थी। जबकि मैं आपको इसका पूरी तरह से संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्यों निश्चित रूप से परमेश्वर ने इस प्रथा पर कठोर कदम नहीं उठाया। मुझे विश्वास है कि इसका संबंध तोरह और सामान्य रूप से बाइबल के ताने बाने में बुनी गई समझ से है। यह है कि कोई भी वस्तु या जीवित प्राणी अपने आप में अशुद्ध या बुरा नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि किसी वस्तु या प्राणी का उपयोग किस लिए किया जाता है और यह किसकी पहचान के लिए है। साथ ही परमेश्वर की उस वस्तु या जीवित प्राणी को पवित्र या अशुद्ध स्थिति प्रदान करने की घोषणा भी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि इज़राइल के पास वह लेने का वैध विकल्प था जिसे परमेश्वर ने निषिद्ध किया है और इसे केवल इसलिए अनुमति दी क्योंकि उनके दिमाग में उन्हें लगा कि वे एक बेहतर या अधिक प्रेमपूर्ण काम कर रहे हैं, और यही बात हमारे लिए भी लागू होती है। इसलिए अपने किनारे पर खड़ा एक बिना काटा हुआ पत्थर स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। एक पैर या एक खंभा जो पैर के तने से बना है और जमीन में ढंसा हुआ है स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं है, लेकिन जब इन चीजों का उपयोग परमेश्वर ईश्वर को सम्मानित करने के प्रयास के रूप में किया जाता है, कम से कम मूसा के समय और व्यवस्था दिए जाने के समय से ऐसा ही है, तो परमेश्वर ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि यह आसानी से प्रसिद्ध मूर्ति पूजक पूजा प्रथाओं के साथ भ्रमित हो सकता है। इन चीजों को करने में परमेश्वर के उपासक का इरादा शायद यहोवा की पूजा के साथ मूर्ति पूजा को मिलाना न हो, लेकिन इसका प्रभाव यह है कि हमने पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है और हमने अपने विचारों को उनके आगे रखा है क्योंकि उन्होंने पहले ही दृढ़ता से कहा है ऐसा मत करो। और दूसरा, ऐसी चीजें करने से उन लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है जिन्हें हम विश्वासियों के समूह के भीतर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है जिन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो परमेश्वर के समुदाय से बाहर है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य के लिए वैध और मूर्ति पूजक के बीच अपने आप अंतर करने की क्षमता बहुत कठिन हो सकती है। इसलिए जब हम तकनीकी बातों, खामियों और अपवादों तथा उन तरीकों की खोज करते हैं जिनसे हम आश्वस्त हैं कि जो हमारे हृदय की शुद्ध अवस्था से आता है उन मामलों में शामिल कर लेते हैं जिनके बारे में प्रभु का नियम अक्सर कहता है कि हमें उनसे बचना चाहिए, तो हम अपनी धार्मिकता को बनाए रखने में सफल होने की अपेक्षा अधिक बार असफल होते हैं, जो कि केवल ईश्वर का उपहार है। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 17 पर चलते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 17 का 1-13 पढ़ें। इस अध्याय में सबसे पहला निर्देश यह है कि यहोवा को केवल निर्दोष पशु ही चढ़ाए जाए। इसके अलावा कुछ भी चढ़ाना प्रभु के प्रति हमारी अवमानना को दर्शाता है। वास्तव में परमेश्वर ऐसी किसी भी चीज को अपने लिए घृणित कहता है, बहुत कठोर भाषा में। प्रभु को एक परिपूर्ण बलिदान के अलावा कुछ भी चढ़ाना गलत है। वह हमसे सर्वश्रेष्ठ की मांग करता है। जब हम जानते हैं कि वह यही अपेक्षा करता है और हम इसके विपरीत करते हैं तो यह धोखा देने का प्रयास है। प्रेरितों के काम 5 में हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा की कहानी है, जो भेंट का एक उपहार लेकर आए थे जो सतही तौर पर उचित और स्वीकार्य लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ वापस ले लिया, उन्होंने धोखा दिया और यह निर्णय घातक साबित हुआ। मूसा की वाचा की सबसे बुनियादी आज्ञा यह है कि इज़राइल किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करेगा, और इसलिए पद 2 बताता है कि मूर्ति पूजा के संदिग्ध व्यक्ति के साथ सरकारी अधिकारियों को क्या करना चाहिए। और जबकि यह आज हमें स्पष्ट लग सकता है, कुछ बुनियादी बातें हैं कि अन्य देवताओं की पूजा क्या होती है जो न्यायाधीशों को मार्गदर्शन करने के लिए निर्धारित की गई हैं, जो अभियुक्त के भाग्य का फैसला करेंगे। मैं इसे दोहराता हूं ताकि हम समझ सकें कि यहां क्या हो रहा है। अध्याय 17 से 21 में हम जो कुछ भी पाएंगे वह विभिन्न मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों के लिए निर्धारित दिशा निर्देश हैं, जिन्हें व्यवस्था के किसी भी संभावित उल्लंघन पर उनके सामने लाए गए मामलों का न्याय करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभु उम्मीद करते हैं कि उनके धार्मिक न्याय के प्रशासन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन हर उस क्षेत्र और बस्ती में किया जाएगा जिसे इज़राइल स्थापित करता है, जैसा कि पद 2 के पहले कुछ शब्दों में कहा गया है। पहली बात जो हम देखते हैं वह यह है कि यह आदेश पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होता है। दूसरी बात यह है कि अन्य देवताओं की पूजा करना यहोवा का सीधा अपमान है और यह उस वाचा का उल्लंघन है जो उसने इज़राइल के साथ बांधी थी। अब यह दिलचस्प है कि पद 3 में परमेश्वर यह स्पष्ट करते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और सितारों की ओर पूजा भेजना कुछ ऐसा है जिसका उन्होंने कभी आदेश नहीं दिया है। यह कथन इस विचार का खंडन करने के लिए बनाया गया है कि आकाशीय पिंडों को पूजा करने के लिए बनाया गया था और पहले के समय में परमेश्वर ने आदेश दिया था कि ऐसी चीज अनुमेय है। यह दूसरों द्वारा कही गई बातों को नकारने के लिए बनाया गया है, यानी ऐसा करना ठीक है। यहां विचार यह है कि वास्तव में आकाश के प्रकाशमानों को उन अन्य देवताओं में से कुछ के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वे उन चीजों के विशिष्ट उदाहरण हैं जिनकी पूजा मनुष्यों द्वारा की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आइए स्पष्ट करें, परमेश्वर ईश्वर को पता है कि कोई अन्य देवता नहीं है। वह जानता है कि बाल और अश्तोरेत और मर्दुक और ज्यूस और अल्लाह और बाकी सभी मनुष्य की उपजाऊ कल्पनाओं के हास्यास्पद नाम हैं, लेकिन मनुष्य ने हमेशा इसके विपरीत सोचा है। ईश्वर को पूरा भरोसा है कि उसने जो ग्रह और तारे और चंद्रमा बनाए हैं वे बस ऐसे ही हैं बनाई गई चीजें, चट्टानों या गैसों की गेंदें जिनमें कोई आत्मा या दिव्य शक्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य अक्सर इसके विपरीत सोचते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कुछ ऐसा जो मुझे सुनने वाले सभी लोग पहले से ही पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि भले ही कोई अन्य देवता किसी भी तरह के भौतिक या आध्यात्मिक रूप में मौजूद न हो, लेकिन वे मनुष्यों की बुरी प्रवृत्तियों के भीतर मौजूद हैं। इसलिए जब आपके पादरी और रब्बी आपको याद दिलाते हैं कि मसीहा और प्रेरित चेतावनी देते हैं कि पैसा, संपत्ति, शक्ति, आपकी नौकरी, समाज में आपकी स्थिति या कोई भी चीज जिस पर हम बहुत आशा या भरोसा करते हैं उसे आसानी से और अनजाने में अन्य देवताओं की स्थिति में पहुंचाया जा सकता है, यह रूपक नहीं है। यह ईश्वरीय अतिशयोक्ति नहीं है जिसे नमक के एक दाने के साथ लिया जाना चाहिए। पैसा स्वाभाविक रूप से चंद्रमा या एक खरे पत्थर या एक नक्काशीदार छवि से अधिक देवता नहीं है, लेकिन न ही पैसा भ्रष्ट करने और चंद्रमा या एक खरे पत्थर या एक नक्काशीदार छवि की तुलना में सर्वोच्च महत्व की स्थिति में चढ़ने की अपनी क्षमता में कोई अलग है। यह सब मोम की एक बड़ी गेंद है और इसलिए हम सभी उन चीजों में से किसी के साथ मूर्ति पूजा करने के लिए लुभाए जा सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि यह वास्तव में एक ईश्वरीय चीज है। ईश्वर के चर्च के भीतर धर्म त्याग और मूर्ति पूजा के नवीनतम मार्ग से बहुत सावधान रहें। समृद्धि सिद्धांत। अन्य देवताओं की पूजा करने का क्या अर्थ है यह परिभाषित करने के बाद पद 4 में इस बात की व्याख्या शुरू होती है कि विद्रोह के इस गंभीर कृत्य के आरोपी व्यक्ति का सामना करते समय न्यायाधीशों और अधिकारियों की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। और यह है कि जैसे ही स्थानीय अधिकारियों को परमेश्वर के व्यवस्था के संभावित उल्लंघन के बारे में सूचित किया जाता है तो पूरी तरह से जांच शुरू की जानी चाहिए, और अगर यह पता चलता है कि आरोपी ने वास्तव में अन्य देवताओं की पूजा की है तो चाहे वह पुरुष हो या महिला, उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से पत्थर मारकर मार डाला जाना चाहिए। इस न्यायिक प्रक्रिया के शब्द उससे भी अधिक सटीक हैं जितना कि यह लग सकता है, क्योंकि जब यह कहता है और यह आपको बताया जाता है या आप इस अपराध के बारे में सुनते हैं तो इसका मतलब है कि चाहे न्यायाधीश किसी जिम्मेदार व्यक्ति से सीधे रिपोर्ट द्वारा इस संभावित उल्लंघन के बारे में सुनता है या यह केवल एक अफवाह है, इसकी जांच होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें, व्यवस्था के सभी संभावित उल्लंघनों के साथ ऐसा नहीं है। यह है कि मूर्ति पूजा का कृत्य इतना गंभीर है कि इसराइल में इसके होने की अफवाह की भी तुरंत जांच होनी चाहिए। हालांकि चूंकि मूर्ति पूजा के लिए एकमात्र संभावित सजा मृत्यु है, तो कम से कम दो और आदर्श रूप से अधिक गवाहों को आगे आकर गवाही देनी चाहिए। आइए स्पष्ट करें, लगभग सभी मामलों में गवाह आरोप लगाने वाले भी थे। गवाह आज की तरह नहीं होता, जहां कोई व्यक्ति डीएनए साक्ष्य या कार के मॉडल या कुछ छोटों की चिकित्सा प्रकृति के बारे में गवाही दे सकता है। बाइबल युग के गवाह वही होते थे जिन्हें हम आज चश्मदीद गवाह कहते हैं। ये वे लोग होते थे जो दावा करते थे कि वे अपराध के समय मौजूद थे और वास्तव में उन्होंने अपराध होते देखा था। लेकिन बाइबल के समय में गवाह का कर्तव्य और भी बड़ा था। एक गवाह मृत्युदंड के मामले में जल्लाद भी होता था। जैसा कि पद 7 में कहा गया है, जो लोग गवाह हैं और जिनके दावे से अभियुक्त की मृत्यु होगी, उन्हें सबसे पहले अपराधी पर पत्थर फेंकना चाहिए और फिर समुदाय के बाकी लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। इस प्रोटोकॉल के पीछे कुछ बेहतरीन मनोविज्ञान है। सबसे पहले, एक गवाह जो मृत्युदंड के मामले में झूठी गवाही देता है, जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा मिलती है, अब उसके सिर पर खून सवार है। इसका मतलब यह है कि अब वह एक हत्यारा है और उसे खुद फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरह पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति खून का दोषी है, वह हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाता है। इसका मतलब है शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की मृत्यु। इसलिए जल्दबाजी में या जानबूझकर झूठी गवाही को हतोत्साहित करने के लिए एक सुरक्षा उपाय था, और कई गवाहों की आवश्यकता होने पर गवाही को सत्यापित किया जा सकता था। फिर जब आरोप लगाने वाले गवाहों ने फांसी की प्रक्रिया शुरू की पहला पत्थर फेंक कर, तो पूरे समुदाय को इसमें शामिल होना था और काम पूरा करना था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पत्थर उठाने वाले और उस अपराधी को मारने में मदद करने वाले हर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? यह खूनी, भयावह और भयानक था। यह आज की तरह साफ सुथरा और लोगों की नजरों से दूर नहीं था। इसका उद्देश्य अपराधी के लिए दर्द रहित होना या समुदाय के लिए दर्द रहित होना नहीं था। परमेश्वर दुष्टों की मृत्यु का आनंद नहीं लेते और न ही उनके लोगों को लेना चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय द्वारा फांसी जैसी चीज में भाग लेने से कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, और न ही उन्हें इस बात का पूरा एहसास होगा कि फांसी कितनी भयानक चीज है और पाप के कितने परिणाम हो सकते हैं। अंत में, हालांकि यह पूरे समुदाय द्वारा ईश्वर की न्याय प्रणाली की पुष्टि करने के बारे में भी था, यह एक संपूर्ण समुदाय था जो स्वीकार करता था कि अत्याचारी बुराई की गई थी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यहोवा के खिलाफ, और समाज से इस दुष्टता को दूर करना उनका काम था। यह मानव सरकार का काम है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में जब रोजमर्रा के मामलों का फैसला करना पुरनियों के एक बोर्ड का काम था, और अगर मामला बहुत गंभीर होता था या उनके निर्णय लेने की क्षमता से परे होता था तो वे मामले को मूसा के पास भेज देते थे। वैसा ही तब होगा जब इसराइल वादा किए गए देश में बस जाएगा। पद 8 से शुरू होकर सरकारी अधिकारियों को एक उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए कहा जाता है, जहां स्थानीय न्यायालयों के लिए बहुत कठिन मामलों का निर्णय किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, यह अपील की अदालत नहीं थी। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां निचली अदालत ने कोई फैसला सुनाया और अभियुक्त ने उसे पलटने की मांग की। यह एक ऐसा मामला था जो निचली अदालत की तुलना में अधिक कठिन या गंभीर था, या बुजुर्ग बस एक फैसले पर सहमत नहीं हो सकते थे। व्यवस्था में कोई अपील प्रणाली नहीं थी। यदि निचली अदालत ने मामले का फैसला किया तो परिणाम वही रहा और यही इसका अंत था। यह निर्देश कि मामले को उस स्थान पर लाया जाए जिसे प्रभु आपके परमेश्वर ने चुना है, का अर्थ है कि इसे एक केंद्रीय न्यायाधिकरण में लाया जा रहा है, निचली अदालतें एक बार जब इसराइल देश में स्थापित हो गया, वे थीं जहां पर मामलों की सुनवाई उस गोत्र द्वारा की जाती थी जिससे कोई संबंधित था। 12 गोत्रों में से प्रत्येक का अपना क्षेत्र था और इसलिए उनकी अपनी निचली अदालतें थीं। लेकिन अगर निचली अदालत के न्यायाधीश मामले पर सहमत नहीं हो पाते तो मामला उच्च न्यायालय में जाता था जिसमें आमतौर पर लेवी पुजारी होते थे। पुजारियों को व्यवस्था की समझ में अधिक परिष्कृत माना जाता था और इसलिए वे कठिन मामलों का फैसला करने के लिए सबसे योग्य थे। इसके अलावा पुरोहित वर्ग पूरे इसराइल पर अधिकार रखता था, इसलिए पुजारियों के एक पैनल का कर्तव्य था कि वे 12 इब्रानी गोत्रों में से किसी से भी उनके पास लाए गए मामलों का फैसला करें। वह स्थान जिसे प्रभु तुम्हारा परमेश्वर चुनता है, जरूरी नहीं कि वह स्थान तंबू हो, बल्कि यह पवित्र भूमि में फैले 48 लेवी शहरों में से कोई भी था और निस्संदेह यह उस स्थान के सबसे निकट था जहां निचली अदालत स्थित थी जिसका उपयोग किसी भी प्रकार से किया जाता था। पद 10 यह स्पष्ट करता है कि लेवी पुजारियों का बोर्ड जो भी निर्णय लेता है उसका निर्णय अंतिम होता है और यह 12 गोत्रों में से किसी पर भी अधिकार रखता है। इसलिए सजा यदि कोई है तुरंत और पूरी तरह से और बिना किसी सहारे के दी जानी चाहिए। निर्देश यहां तक कहते हैं कि यदि स्थानीय अधिकारी अर्थात स्थानीय आदिवासी नेता उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कार्य करने से इनकार करते हैं तो उस आदिवासी अधिकारी या अधिकारियों के समूह को मार दिया जाएगा। इस खतरे को जोड़ने के पीछे व्यावहारिक कारण थे। मैंने आपको सामाजिक संगठन की कबीलाई प्रणाली की कुछ बारीकियों के बारे में पहले ही बताया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोत्र के प्रति वफादारी ही सब कुछ है। हर गोत्र का लक्ष्य सभी अन्य गोत्रों पर सबसे ज्यादा हावी होना है। कई कबीलाई प्रमुखों या राजकुमारों द्वारा अपनी व्यक्तिगत वफादारी देने या अपनी व्यक्तिगत शक्ति का कुछ हिस्सा किसी केंद्रीय प्राधिकरण को सौंपने का विचार बिल्कुल भी सही नहीं था। जंगल में मूसा लगातार इस वास्तविकता से जूझ रहा था और इसलिए वह किसी तरह की राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की कोशिश में इसराइल के 12 कबीलाई प्रमुखों के साथ कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में था। लेकिन मिस्र से अपनी यात्रा में ज्यादातर इसराइलियों ने यह समझ लिया था कि उनका अस्तित्व गोत्रों के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। हालांकि एक बार जब वे अपनी जमीन के आवंटन में बस गए तो राष्ट्रीय एकता और आपसी सुरक्षा की जरूरत कम हो गई और इसलिए हर कबीलाई नेता अपने क्षेत्र में रहने वालों पर सर्वोच्च अधिकार बन गया। इसलिए हमने 4 बुनियादी प्रकार के मानवीय अधिकार में से एक की जांच की है जिसे परमेश्वर ने इसराइल न्यायियों के लिए अधिकृत किया है और अब पद 14 अगले को स्थापित करना शुरू करता है, एक राजा। यह बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि अधिकांश लोग जो अपनी बाइबल जानते हैं वे शमूएल द्वारा राजा शाऊल को नियुक्त किए जाने और इसराइल के पहले राजा की ताजपोशी के बारे में कथा के सामान्य रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में सोचते हैं। फिर भी यहां हम देखते हैं कि यहोवा उस दिन की आशा कर रहा है जब इसराइल का एक राजा होगा और इसलिए उन सीमाओं और नियमों को सूचीबद्ध करता है जिनके तहत इसराइल के राजाओं को काम करना चाहिए। यह जानकारी पूर्ण है कि यह खंड तोरह में एकमात्र स्थान है जो इसराइल पर राजा होने की संभावना के विषय को सामने लाता है और स्वर इस तरह की घटना का एक हिस्सा है जो लोगों की इच्छाओं के लिए एक अंतिम रियायत है, न कि कुछ ऐसा जो प्रभु इसराइल के लिए आदर्श रूप से चाहते हैं और इसलिए प्रतिबंध है। पहला यह है कि राजा कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे यहोवा चुनता है, हालांकि यह संकेत नहीं देता है कि यह विकल्प कैसे संप्रेषित किया जाएगा। और दूसरा यह कि यह राजा एक इसराइली होना चाहिए और कभी भी विदेशी नहीं होना चाहिए। मुझे यह टिप्पणी करने दें कि राजा के बारे में प्रभु द्वारा सहमति व्यक्त किया जाना भविष्यवाणी है। ये एक समय मूसा के लगभग 300 वर्ष बाद की बात करता है जब ऐसा होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आसन्न नहीं था। कुछ न्यूनतमवादी बाइबल विद्वानों ने तर्क दिया है कि राजा के इस उल्लेख का अर्थ है कि व्यवस्था विवरण या कम से कम व्यवस्था विवरण का यह भाग बेबीलोन के निर्वासन के बाद तक लिखा भी नहीं गया था, क्योंकि तब तक इज़राइल को राजाओं के साथ कुछ बहुत बुरे अनुभव हो चुके थे और इसलिए वे इन अत्याचारियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाना चाहते थे। इन अंशों में इतनी बाद की तारीख परेजने का कोई कारण नहीं है। मूसा के युग के दौरान पूरी ज्ञात दुनिया में राजा थे और कनान दर्जनों शायद स्कोर राजाओं का घर था। एक राजा क्या करता था, वह कैसे सत्ता में आया, उसने कैसे शासन किया और बहुत कुछ यह अनादिकाल से अच्छी तरह से स्थापित था और लोगों के लिए उनके ऊपर राजा न होना लगभग अकल्पनीय था। इसलिए यह मानवीय स्वभाव था कि इज़राइल परमेश्वर द्वारा उनके परमेश्वर और राजा दोनों होने की पेशकश के बावजूद अंततः एक दृश्यमान मानव सम्राट की मांग करेगा जो उनके पड़ोसियों की तरह उन पर शासन करे। जब हम पुनः मिलेंगे तो हम उन सीमाओं की जांच करेंगे जो प्रभु ने इज़राइल के भावी राजाओं के लिए निर्धारित की हैं।